एक पुनर्मूल्यांकन की बात साहित्य में तब आती है जब किसी रचना, कवि अथवा युग विशेष को देखने परखने की दृष्टि में गुणात्मक अंतर आ जाए। हर समय की दृष्टि से अगला मूल्यांकन पुनर्मूल्यांकन नहीं होगा, क्योंकि संभव है कि वह पिछले मूल्यांकन का ही विस्तार अथवा पूरक हो। पुनर्मूल्यांकन का एक साथ ही रचना और प्रचलित समीक्षा दृष्टि दोनों का होता है। इस माने में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया साहित्य बोध के नए स्तर को उद्घाटित करती है। समकालीन साहित्य के मूल्यांकन की प्रक्रिया में गुणात्मक परिवर्तन होता है, तो पिछले युगों के साहित्य का पुनर्मूल्यांकन एक स्वाभाविक और अनिवार्य परिणाम होगा, क्योंकि साहित्य मात्र के मूल्यांकन की प्रक्रिया एक तान होगी। यों पुनर्मूल्यांकन के माध्यम से हम युग युग के साहित्य को समकालीन जीवन से जोड़ते चलते हैं। तब स्वभावतः प्रश्न उठता है कि क्या आधुनिक साहित्य चिंतन की प्रक्रिया में पिछली समीक्षा पद्धति की तुलना में ऐसा कोई गुणात्मक परिवर्तन आया है। वस्तुतः इस प्रश्न का उत्तर तो इस पूरे निबंध को ही देना चाहिए। इस पुनर्मूल्यांकन का प्रमुख आधार और वैशिष्ट्य यही है कि पुराने समीक्षक जहां रचना के अर्थ और अनुभव को शास्त्र के विभिन्न उपकरणों के माध्यम से बांध कर रखना चाहते हैं, वहां आधुनिक समीक्षा अर्थ और अनुभव को उन्मुक्त तथा विकसनशील रखना चाहती है, क्योंकि अनुभव की जीवंत, सुकुमार और संवेदनशील प्रक्रिया को अक्षत बनाए रखने का यही एक तरीका है। यही कारण है कि पारंपरिक समीक्षा में अर्थ खत्म हो जाता है, कर दिया जाता है, जबकि नया साहित्य चिंतन अर्थ और अनुभव को कम से कम क्षरित होने देता है। अनुभव के संश्लिष्ट रूप को संप्रेषित करना रचना की कृतकृत्यता है, और इस संप्रेषण की प्रक्रिया को प्रशस्त और समृद्ध बनाना समीक्षा का कार्य है, जो निश्चय ही एक अर्थ में बहुत बड़ी चुनौती है। समीक्षा की सार्थकता को जांचने का यही एक आधार हो सकता है कि उसने रचना के अनुभव को कहां तक प्रशस्त और विकसनशील बनाया है, उसके वैशिष्ट्य को कहां तक पहचाना है। और ऐसी समीक्षा तभी संभव है जबकि हम रचना को वास्तु, शिल्प, मूर्ति या चित्र की तरह किसी स्तर पर समग्रता में उसके अनुभव की संश्लिष्टता में देखने का यत्न करें। पर हिंदी की पिछली समीक्षा ने परंपरागत भारतीय चिंतन के सूक्ष्म पक्षों को उपेक्षित करके अधिकतर उसके बाहरी वर्गीकरण पक्ष को ही लिया है। यही कारण है कि संश्लिष्ट रचना साहित्य की समीक्षा हिंदी के आलोचक अधिकतर वर्गीकरण की सहायता और खंड दृष्टि के माध्यम से करते हैं। कामायनी का मूल्यांकन भी अब तक बहुत कुछ ऐसी ही पद्धति से हुआ है। कामायनी को समझने की अब तक की पद्धतियां रही हैं महाकाव्य के रूप में, रूपक के रूप में, ऐतिहासिक इतिवृत्त के रूप में, दार्शनिक रचना के रूप में या ऐसे ही कुछ अन्य पक्षों को आधार बनाकर। पर कामायनी को महाकाव्य की दृष्टि से देखना या कि उसके चरित्रांकन की व्याख्या करना, उसमें रस की स्थापना करना या रूपकत्व पर बल देना या उसके दर्शन को महत्व देने लगना आधुनिक हिंदी काव्य की एक महत्वपूर्ण रचना के वैशिष्ट्य को अनदेखा करने का सफल प्रयत्न है। कामायनी को महाकाव्य कहकर हम इस कृत के विशिष्ट और समग्र विधान की प्रायः सबसे अधिक उपेक्षा करते हैं। हिंदी समीक्षा में यह चलन है लगभग अंधविश्वास के स्तर पर कि बिना किसी रचना को महाकाव्य कहे हम उसे श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण घोषित नहीं कर सकते, और महाकाव्य होने के लिए कुछ नियम हैं, शर्तें हैं। तो समीक्षा की प्रचलित पद्धति यह है कि किसी महत्वाकांक्षी रचना को महाकाव्य की कसौटी पर कसा जाए, फिर कहा जाए कि महाकाव्यत्व की दृष्टि से इसमें अमुक अमुक त्रुटियां हैं, और फिर समीक्षक की मर्जी है कि इन त्रुटियों आदि को देखते हुए उस रचना को महाकाव्य घोषित करे या न करे। समीक्षक की अनिश्चय वृत्ति को समझते हुए कुछ कवियों ने तो इसलिए स्वयं अपनी कृति को महाकाव्य कहकर ही प्रस्तुत किया। यहाँ यह बड़ी सुविधा से भुला दिया जाता है कि महाकाव्य के संदर्भ में लेखक की जो त्रुटियां आकी गई हैं, वे ही तो उस रचना का विशिष्ट विधान है, जिसे रचनाकार ने बड़ी मेहनत और अंतर्दृष्टि के साथ विकसित किया है। तो महाकाव्य के रूप में किसी रचना को जांचने में बराबर यह हुआ है कि जिन रूढ़ियों को कवि ने तोड़ा है उन्हें बलात् ढूंढने की कोशिश की जाए और पूरी रचना के जिस विशिष्ट विधान को उसने विकसित किया है उसे नजरअंदाज कर दिया जाए। कामायनी के महाकाव्यत्व के सिलसिले में मंगलाचरण और नायक की खोज तथा कथा के औदात्य का विश्लेषण ऐसी ही चेष्टाएं हैं।